एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकल रहे हैं, 20वीं सदी के आयरिश साहित्य की दुनिया में।
जी हाँ, और यह सफर थोड़ा घुमावदार होने वाला है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फ्लैन ओब्रायन के उपन्यास एट स्विम टू बर्ड्स की। 1939 में आया ये उपन्यास, मतलब जब दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही थी।
हाँ, और ओब्रायन खुद भी, मतलब उनका असली नाम तो ब्रायन ओनोलन था, वो जेम्स जॉयस और सैमुअल बेकेट जैसे बड़े नामों के जमाने के थे, पर उनकी अपनी एक अलग ही, क्या कहते हैं, पहचान थी।
हाँ, एकदम अलग, थोड़ा मजाकिया अंदाज, भाषा के साथ खेलना और एक गहरी आयरिश छाप।
बिल्कुल, कहते हैं दिन में वो एक सरकारी अफसर थे और रात में एकदम साहित्यिक विद्रोही।
और शायद यही चीज, मतलब ये दोहरी पहचान उनके इस उपन्यास में भी दिखती है। एट स्विम टू बर्ड्स कोई सीधी साधी कहानी तो है नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो जैसे कहानियों के अंदर कहानियों का एक जाल है, एक आईना जिसमें कई और आईने नजर आते हैं।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस उलझे हुए उपन्यास को थोड़ा सुलझाएं, समझें कि ये कहानी कहने के तरीके पर क्या सवाल उठाता है।
हाँ, और कैसे ये लेखक और उसके बनाए किरदारों के रिश्ते को देखता है, और हाँ, आयरिश पहचान की भी बात करता है।
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे ज्यादा, मतलब, व्यावसायिक सफलता नहीं मिली थी।
जी, लेकिन ग्रैहम ग्रीन, जेम्स जॉयस जैसे लेखकों ने इसकी तारीफ की, और बाद में तो इसे पोस्ट मॉडर्न साहित्य का एक जरूरी हिस्सा माना गया।
तो चलिए इस भूल भुलैया के केंद्र में चलते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है?
कहानी शुरू होती है डबलिन के एक यूनिवर्सिटी छात्र से, उसका नाम नहीं बताया गया है, और वो काफी आलसी है।
आलसी मतलब?
मतलब ज्यादातर बिस्तर पर पड़ा रहता है, दोस्तों के साथ पब चला जाता है, पढ़ाई से बचता है, और उसके अंकल हैं जो उसे हमेशा टोकते रहते हैं।
अच्छा, पारंपरिक अंकल जो चाहते हैं कि लड़का पढ़ लिख ले।
हाँ बिल्कुल, लेकिन इस, मतलब, साधारण सी दिखने वाली जिंदगी के पीछे वो छात्र एक उपन्यास लिख रहा है।
अच्छा, यही से मामला दिलचस्प होता है।
हाँ, और वो सिर्फ लिख नहीं रहा, वो लिखने के बारे में सोच भी रहा है। उसके अपने सिद्धांत हैं।
सिद्धांत? कैसे सिद्धांत?
उसका एक खास आइडिया है कि किरदारों की, मतलब कैरेक्टर्स की, अपनी मर्जी होनी चाहिए, वो लेखक की कठपुतली ना हो।
ये तो बड़ा गहरा विचार है। क्या ये सिर्फ लिखने का स्टाइल है या इसमें लेखक की जिम्मेदारी पर भी कोई इशारा है?
मुझे लगता है दोनों हैं। एक तरफ तो ये लिखने का नया तरीका है, मेटाफिक्शन जिसे कहते हैं, पर दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि भाई, आप जो रच रहे हो उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है?
और यहीं से उपन्यास का असली खेल शुरू होता है।
एकदम, छात्र के उपन्यास के किरदार, और फिर कमाल ये कि उन किरदारों के रचे किरदार, वो सब अपने अपने बनाने वालों के खिलाफ बगावत कर देते हैं।
अरे वाह, मतलब कहानी के अंदर कहानी।
हाँ।
और वो कहानी खुद ही अपने बनाने वाले के काबू से बाहर हो रही है।
जी हाँ, तो मोटे तौर पर देखें तो तीन धाराएं हैं जो एक दूसरे में गुथी हुई हैं।
तीन कौन कौन सी?
पहली तो है हमारे छात्र की अपनी जिंदगी, उसका आलस, दोस्त, पब, अंकल से बहस, वो सब।
हाँ, जो आपने बताया थोड़ा साधारण सा।
हाँ, जानबूझकर,
ताकि जो उपन्यास के अंदर की दुनिया है वो और भी ज्यादा चटपटी और अजीब लगे।
सही है, कंट्रास्ट पैदा करने के लिए।
अच्छा, और दूसरी धारा?
दूसरी है छात्र का अपना उपन्यास,
वो लिख रहा है एक लेखक के बारे में, डर्मोट ट्रेलिस।
डर्मोट ट्रेलिस, ये कैसा लेखक है?
कोई बहुत महान नहीं, मतलब थोड़ा सनसनीखेज, नैतिक शिक्षा टाइप की कहानियां लिखने वाला।
ट्रेलिस अपने उपन्यास के लिए किरदार इकट्ठा करता है, कुछ खुद बनाता है, जैसे एक विलन जॉन फ्रिस्की,
और कुछ
उधार लेता है, शायद आयरिश मिथकों से।
हाँ बिल्कुल, यहीं ओब्रायन अपनी जड़ों से जुड़ते हैं।
हाँ,
ट्रेलिस ले आता है महान योद्धा फिन मक्कूल को, फिन मक्कूल आयरिश कहानियों के हीरो।
हाँ,
और पागल कवि स्विनी को, और तो और लोक कथाओं से पुकारा मैकफेलेमी जैसे शराती किरदार को भी।
वाह,
मतलब मिथक, लोक कथाएं, सब एक जगह, लेकिन ट्रेलिस इन किरदारों के साथ करता क्या है?
यही तो गड़बड़ है, उन्हें अपने होटल में रखता है, और जब कहानी में उनकी जरूरत नहीं होती
तो
उन्हें नशीली दवा देकर सुला देता है।
क्या, ये तो बहुत बुरा है, मतलब किरदारों का शोषण।
हाँ, ये शायद बुरे लेखन का प्रतीक है, या लेखक की तानाशाही का, कि किरदार सिर्फ चीजें हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो।
और कहानी में फिर एक मोड़ आता है ना, कुछ ऑर्लिक के जन्म से जुड़ा।
जी, ट्रेलिस अपनी ही एक महिला किरदार है शीला लमोंट, उस पर जादुई तरीके से हमला करता है, जिससे ऑर्लिक ट्रेलिस का जन्म होता है।
ओह, और ये ऑर्लिक?
ऑर्लिक पैदा होते ही जवान है और अपने पिता ट्रेलिस से कहीं ज्यादा अच्छा लेखक है। ये घटना बहुत, मतलब, अनैतिक तो है ही, पर ये किरदारों के अंदर विद्रोह की आग भी जला देती है।
क्या होता है इस कहानी में?
फिन मैक्यूल का हाल देखकर थोड़ी उदासी होती है। वो महान योद्धा ट्रेलिस की कहानी में एक बूढ़े शिकायतें करने वाले आदमी जैसे दिखाए गए हैं।
मतलब उनकी वीरता का कोई मोल नहीं रहा।
हाँ, वो अपनी पुरानी बातें याद करते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर आज के डबलिन में उनकी बातें खोखली लगती हैं। वो छोटी मोटी चीजों में उलझे दिखते हैं।
ये शायद आयरलैंड के अतीत और वर्तमान का एक तरह का टकराव है।
बिल्कुल, ओब्रायन शायद यही दिखा रहे हैं। थोड़ी हंसी भी आती है पर दुख भी होता है एक हीरो की ऐसी हालत।
और वो दूसरा किरदार स्वीनी, जिसे पक्षी बनने का श्राप मिला था।
स्वीनी का हिस्सा बिल्कुल अलग है। वो उपन्यास में एक काव्यात्मक गहराई लाता है। उसकी कविताएं, जो असल में पुरानी आयरिश कविताओं का अनुवाद है, उनमें दुख है, प्रकृति प्रेम है, निर्वासन का दर्द है।
मतलब वो हिस्सा बाकी किताब के मजाक और व्यंग्य से अलग है,
अंदर लिखा गया है वो।
तो एक तरफ ये मिथ की किरदार हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है।
हाँ।
और दूसरी तरफ खुद ट्रेलिस है, वो लेखक जो ये सब कर रहा है।
हाँ।
उसका क्या हश्र होता है?
ट्रेलिस वो बुरे अहंकारी लेखक का प्रतीक बन जाता है, किरदारों का शोषक। लेकिन धीरे धीरे उसका पतन होता है। वो जो खुद को सबका मालिक समझता था, वो अपने ही किरदारों के जाल में फंस जाता है।
अच्छा, मतलब जैसा बोया वैसा काटा।
हाँ, कुछ वैसा ही।
और इन सब के ऊपर हमारा छात्र कथावाचक है।
हाँ।
वो पहला बनाने वाला, क्या उसका कंट्रोल रहता है अपने कहानी पर?
नहीं नहीं, धीरे धीरे उसका कंट्रोल भी ढीला पड़ता जाता है। उसकी बनाई दुनिया उसके हाथ से फिसलने लगती है। और यहीं से हम आते हैं तीसरी और सबसे विस्फोटक कहानी पर,
किरदारों का विद्रोह आखिरकार।
हाँ।
तो ये होता कैसे है? मतलब अचानक एक दिन सब जाग जाते हैं?
धीरे धीरे। ट्रेलिस का बर्ताव, उसकी घटिया कहानी और शायद ऑर्लिक का जन्म, इन सब चीजों से किरदारों में चेतना आती है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ कठपुतलियां नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है।
और इस विद्रोह को लीड कौन करता है?
जॉन फ्रिस्की, वही जिसे ट्रेलिस ने विलेन बनाने के लिए चुना था।
अरे, विलेन अब हीरो बन रहा है, वो क्या चाहता है?
फ्रिस्की कहता है, मुझे विलेन नहीं बनना, मुझे तो एक आम शांत जिंदगी जीनी है। वो ट्रेलिस की लिखी किस्मत को मानने से इनकार कर देता है।
ये तो कमाल है, किरदार अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं।
बिल्कुल।
और वो शरारती किरदार पूका मैकफिले में, उसकी क्या भूमिका है इसमें?
पूका तो वो अपनी जादुई ताकतों से इस विद्रोह को और हवा देता है। वो किरदारों के बीच बातचीत करवाता है, उन्हें ट्रेलिस के खिलाफ भड़काता है, प्लान बनाता है। वो एकदम कल्पना की बेलगाम ताकत जैसा है। उसे सारे हंगामे में मजा आ रहा है।
तो फिर क्लाइमैक्स क्या होता है? ये सब मिलकर ट्रेलिस का क्या करते हैं?
वो मदद लेते हैं ऑर्लिक के। ऑर्लिक, जो अपने बाप से नफरत करता है और खुद बेहतर लेखक है, वो खुशी खुशी तैयार हो जाता है।
अच्छा।
सब मिलकर ट्रेलिस को उसी की दवा चखाते हैं, मतलब नशीली चीज पिलाकर सुला देते हैं।
लेखक को उसी के हथियार से मारा।
फिर क्या?
फिर क्या?
फिर जो होता है वो है मेटाफिक्शन की पराकाष्ठा। जब ट्रेलिस सोया होता है, ऑर्लिक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करता है।
नया उपन्यास किसके बारे में?
डर्मट ट्रेलिस के बारे में। लेकिन इस बार ट्रेलिस लेखक नहीं, वो अभियुक्त है। उस पर मुकदमा चलेगा।
क्या कह रहे हैं? मतलब लेखक अपनी ही कहानी में, अपने बेटे की लिखी कहानी में कटघरे में?
ये तो
दिमाग घूम गया।
हाँ, कहानी एक अजीब से कोर्टरूम ड्रामा में बदल जाती है। ट्रेलिस के ही किरदार उस पर केस चलाते हैं।
और वकील कौन बनता है?
पूका मैकफिलम है। अपनी चालाकी से वो प्रोसिक्यूटर बन जाता है। वो ट्रेलिस पर इल्जाम लगाता है क्रूरता, साहित्यिक चोरी, किरदारों से बुरा बर्ताव।
और बचाव पक्ष?
बचाव के लिए आती है गुड फेरी, पर वो बेचारी कुछ ज्यादा कर नहीं पाती, उसकी दलीलें कमजोर हैं। पूरा मुकदमा ही एक तरह का मजाक है, पर सवाल गंभीर है, लेखक की जवाबदेही का।
और सजा? जाहिर है सजा भी कोई असली तो होगी नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। किरदार उसे अजीब अजीब सी काल्पनिक सजाएं देते हैं। कोई चिकोटी काट रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। ये सब ऑर्लिक के उपन्यास में हो रहा है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, जो छात्र के उपन्यास का हिस्सा है, जिसे छात्र लिख रहा है।
परत दर परत दिमाग चकरा रहा है।
हाँ, ये पाठक को लगातार याद दिलाता है कि ये सब रचा हुआ है।
लेकिन अंत कैसे होता है इस सब का? क्या किरदार कामयाब होते हैं? ट्रेलिस को सजा मिलती है?
अंत भी उतना ही अजीब और अचानक है। जब ऑर्लिक की कहानी में किरदार ट्रेलिस को फाइनल सजा देने ही वाले होते हैं, कहानी एकदम से रुक जाती है।
रुक जाती है
क्यों?
क्योंकि हम वापस छात्र की असली दुनिया में आ जाते हैं।
और वहां क्या होता है? छात्र के अंकल की नौकरानी घर साफ करते हुए छात्र की पांगुलिपि के पन्ने,
हाँ।
वही पन्ने जिन पर ट्रेलिस का मुकदमा चल रहा था, उन्हें आग जलाने के काम में ले लेती है।
ओ अरे नहीं, मतलब पूरी साहित्यिक क्रांति घर की सफाई में जल गई, क्या विडंबना है।
हाँ, पांडुलिपि जली तो ट्रेलिस आजाद हो गया, क्योंकि जिस कहानी में वो फंसा था वही खत्म हो गई। किरदार बिखर गए, विद्रोह अधूरा रह गया, सब खत्म।
और उस छात्र का क्या हुआ, पहला लेखक?
और भी अजीब, वो छात्र जो पढ़ाई से भागता था वो अचानक परीक्षा पास कर लेता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है।
कमाल है, जैसे कि वो पूरा लिखने का प्रयोग खत्म हुआ और वो वापस नॉर्मल जिंदगी में लौट आया।
हाँ, उपन्यास एकदम झटके से खत्म होता है, कोई साफ सुथरा अंत नहीं।
शायद यही पॉइंट है कि कहानियों का अंत भी जिंदगी की तरह, मतलब तयशुदा नहीं होता, मनमाना हो सकता है।
बिल्कुल। अच्छा, अब जरा इसकी स्टाइल और तकनीकों पर बात करें। मेटाफिक्शन तो जाहिर है।
हाँ, वो तो है ही। छात्र खुद शुरू में कहता है कि एक अच्छी किताब के 3 अलग अलग आरंभ हो सकते हैं।
जी, वो पाठक को शुरू से ही बता देता है कि ये कोई सीधी कहानी नहीं है,
और उसमें अलग अलग स्टाइल की नकल, पैरोडी, वो भी जबरदस्त है।
हाँ, ओब्रायन ने कमाल का काम किया है। वो आयरिश मिथकों की भारी भरकम भाषा, कानूनी कागजों की बोरिंग भाषा, लोक कथाओं की सादी भाषा और छात्र की किताबी भाषा, सबको मिला देते हैं,
और इसी टकराव से हंसी पैदा होती है।
बिल्कुल, पाठक लगातार चौंकता रहता है।
कहानी कहने का तरीका भी टूटा फूटा सा है, मतलब एक सीधी लाइन में नहीं चलती।
सही कहा, विखंडन या फ्रैगमेंटेशन। कहीं छात्र की डायरी है, कहीं उसके उपन्यास के हिस्से, कहीं फिन मैककूल के लंबे भाषण, कहीं स्वीनी की कविताएं। पाठक को खुद ही इन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है।
और विडंबना, आयरनी तो कूट कूट कर भरी है।
हाँ, हीरो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, नैतिक लेखक अनैतिक है, विद्रोह सफाई में खत्म हो जाता है। छात्र का वो कहना भी मजेदार है, एक संतोषजनक उपन्यास एक स्वतः स्पष्ट दिखावा होना चाहिए।
हाँ हाँ, एक और चीज, वो छात्र हर चीज की लिस्ट बनाता है, वर्गीकरण करता है।
जी, जैसे शुरुआत कितने तरह की हो सकती है या किरदार कितने तरह के, ये उपन्यास के अंदर की जो उथल पुथल है और उसे बताने का ये व्यवस्थित तरीका, इसके बीच का तनाव भी मजेदार है।
इन सब तकनीकों से ओब्रायन कुछ बड़े मुद्दे उठाते, सबसे खास क्या लगता है आपको?
मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मुद्दा है कल्पना और असलियत के बीच की वो धुंधली सी लाइन। ये किताब बार बार पूछती है क्या असली है, छात्र की जिंदगी, उसका उपन्यास, किरदारों का विद्रोह, लेखक, कहानी, पाठक, सब जैसे घुलमिल जाते हैं।
और दूसरा, वो लेखक की तानाशाही बनाम किरदार की आजादी वाला सवाल।
हाँ बिल्कुल, क्या लेखक भगवान है अपनी रचना का, या किरदारों की भी अपनी कोई मर्जी, अपना कोई वजूद हो सकता है? ट्रिलिस का जो हाल होता है और किरदारों का जो विद्रोह है, वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है।
ये सोचने वाली बात है कि हम जो रचते हैं उससे हमारा रिश्ता कितना पेचीदा हो सकता है।
जी, और फिर एक और बात है कहानी कहने के बारे में, कि कोई कहानी शायद बिल्कुल नई नहीं होती, हम पुरानी कहानियों, मिथकों को ही बार बार इस्तेमाल करते हैं।
जैसे छात्र खुद कहता है कि साहित्य एक खजाना है जहां से लेखक अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें निकाल सकता है।
हाँ, और ओब्रायन आयरिश मिथकों का इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि वो आज की दुनिया में कैसे जिंदा हैं या कैसे बदल गए हैं।
इसके अलावा आयरिश समाज और साहित्य पर भी तीखा व्यंग्य है,
है ना? छात्रों की वो बड़ी बड़ी बातें करने की आदत, मिडिल क्लास सोच जैसे अंकल के जरिए दिखाई है, और आयरलैंड का वो महान अतीत और आज का साधारण हाल, इन सब पर कटाक्ष है।
एक और बात जो आपने कही थी कि रचनात्मकता सिर्फ लेखक की नहीं होती।
हाँ, रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण, इस कहानी में किरदार खुद क्रिएटिव हैं, वो अपनी कहानी गढ़ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। ऑर्लिक तो अपने बाप से बेहतर लेखक है, कल्पना किसी एक की बपौती नहीं।
अगर पढ़ने के अनुभव की बात करें तो क्या ये सिर्फ दिमागी कसरत है या भावनाएं भी हैं?
नहीं नहीं, सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर एक बार आप इसके अंदाज को पकड़ लें तो इसमें जबरदस्त हास्य है, भाषा का खेल, सिचुएशन का मजाक, हंसी आती है।
लेकिन सिर्फ हंसी तो नहीं है, आपने स्वीनी की कविताओं का जिक्र किया था, फिन के दुख का।
हाँ बिल्कुल, हंसी के साथ साथ इसमें गहरी उदासी और करुणा भी है। फिन को देखकर दुख होता है, स्वीनी की कविताएं तो दिल को छू जाती हैं। तो ये किताब हंसाती भी है, सोचने पे मजबूर करती है, और कहीं कहीं रुलाती भी है। भावनाओं का एक अनोखा मेल है।
और पाठक पर इसकी छाप क्या रहती है, मतलब पढ़ने के बाद क्या याद रहता है?
मुझे लगता है सबसे बड़ी छाप यह है कि यह साहित्य को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। ये कहानी कैसे बनती है, उसकी परतें क्या हैं, ये सब खोल कर रख देती है।
हाँ, और वो सवाल छोड़ जाती है कि कहानी पर कंट्रोल किसका है, लेखक का, किरदार का या पढ़ने वाले का।
जी, ये कल्पना की उसकी असीम संभावनाओं का जश्न मनाती है।
और इन सब ऊंची साहित्यिक बातों के बीच डबलिन की आम जिंदगी की झलक भी है।
हाँ हाँ,
वो पब वाली एक लाइन है ना,
हाँ,
When money's tight, a pint of plain is your only man. ये जब जेब खाली हो, घोड़ा भी हार जाए, कर्ज हो, तो बस एक ग्लास बियर ही साथी है। ये आम आदमी की छोटी खुशियों और उसके फलसफे को दिखाता है। इस मुश्किल किताब को जमीन से जोड़े रखता है।
तो कुल मिलाकर At Swim to Birds एक चुनौतीपूर्ण किताब है, पर उतनी ही फायदेमंद भी।
हाँ, ये ध्यान मांगती है, सब्र मांगती है, पर बदले में हास्य, विचार और साहित्य की एक नई समझ देती है।
ये उन किताबों में से है जिनसे आप सिर्फ गुजरते नहीं बल्कि जूझते हैं और कुछ सीखते हैं।
बिल्कुल।
तो आखिर में एक लाइन में सोचें तो ये उपन्यास हमें सिखाता है कि कल्पना की दुनिया कितनी अप्रत्याशित हो सकती है, कितनी आजाद और कभी कभी काबू से बाहर भी।
हाँ, जहां बनाने वाला भी अपनी बनाई चीज के आगे बेबस हो सकता है। और ये कहानी कहने की कला का, उसकी अनगिनत संभावनाओं का, उसके खेल का उत्सव है। कहानी किसकी है?
बिल्कुल, अंत में सवाल यही रह जाता है, कहानी आखिर है किसकी?
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।